जय जय श्री चैतन्य जय चैतन्यनंद चैतन्य चैतन्य बाजी लीला
श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला
टेक्स्ट नंबर 156
श्लोक संख्या 156
चैप्टर 6
अध्याय 6
तयतिरोहित पश्चा Make it crisper.
Crisper. Come on, bolo.
Sati Shetragya Sangita. Shakti Shetra Gya Sangyitya. Now see, you're talking, you people over here are saying different times than over here. I can hear it.
Maharaj bata rahe hain, shlok hum ek saath uchcharan kar rahe hain. Ye wala portion alag uchcharan kar rahe hain, ye alag
uchcharan. Shakti Shetra Gya Sangyitya. Shakti Shetra Gya Sangyitya. Sarva Bhuteshu Bhupala Sarva Bhuteshu Bhupala Taratam Yena Vartate Taratam Yena Vartate
अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय अनुवाद अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर ये जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है हे राजन इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्त रहता है तात्पर्य भौतिक शक्ति जीव पर विभिन्न मात्राओं में प्रभाव दिखलाती है ये प्रभाव जीव द्वारा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का सान्निध्य प्राप्त करने पर निर्भर करता है कुल 84 लाख योनियां हैं जिनमें से कुछ निम्न है कुछ उच्च और कुछ मध्यम है शरीरों का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार किया जाता है निम्न श्रेणियों में यथा जलचर वृक्ष पौधे कीड़े पक्षी आदि में आध्यात्मिक चेतना का प्राय अभाव रहता है मध्य श्रेणी में जिसमें मनुष्य आता है आध्यात्मिक चेतना अपेक्षता अधिक जागृत रहती है उच्च श्रेणी में आध्यात्मिक चेतना पूर्णता जागृत होती है तब जीव अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है और कृष्ण भावना विकसित करके भौतिक शक्ति के प्रभाव से बचने की चेष्टा करता है
सो श्री चैतन्य महाप्रभु इज प्रीचिंग हेवी फिलॉसफी श्री सर्वगोपालाचार्य
श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रचार कर रहे हैं बहुत ही भारी सिद्धांत से
As you know, Sarvabhauma Bhattacharya was a very strong impersonalist. He was the chief priest of the impersonalists.
जैसा कि हम जानते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य मुख्य प्रीस्ट थे सारे जो मायावादी हैं
The primary follower of Shankaracharya at that time.
उस समय शंकराचार्य के जो अनुगत थे जो उसमें सबसे मुख्य सार्वभौम
भट्टाचार्य
और उनके खुद की बहुत बड़े फॉलोइंग थी बहुत सारे उनके शिष्य थे
सो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर
वे बहुत ही प्रख्यात पंडित थे
बट द डिफेक्ट ऑफ मटेरियल स्कॉलरशिप इज चेंजिंग द मीनिंग
परंतु भौतिक पांडित्य का में जो त्रुटि है कि वह अर्थ को बदल देते हैं
But he is, in America we say, outgunned. That means stronger firing power by Chaitanya Mahaprabhu.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सटीक रूप से उन पे सिद्धांत का प्रहार किया.
That is, Mahaprabhu, remember, he was known in his earlier years as Nimai Pandit.
जैसा कि हम जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन में उन्हें निमाई पंडित के नाम से जाना चाहता था.
श्री कृष्ण बलराम श्री राधे कृष्ण As the Maya Pandit, he used to go all over Nadia and no one could defeat him.
निमाय पंडित के रूप में वह नदियां में हर जगह जाते थे और उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाता था।
He would knock on the door and as soon as somebody came to the door, because it was a community of so-called Brahmins.
तो दरवाजे पे खटखटाते थे और जैसे कोई आता था,
they would be afraid to see him because they knew there was going to be an argument.
तो अगर वह देखते हैं निमाय पंडित है तो ब्राह्मण उनके सामने आने से घबराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अब बहुत वाद विवाद होगा।
But he would force them to argue scripture even if they didn't want to.
परंतु निमाय पंडित फिर भी उनको जबरदस्ती शास्त्रों से उदित करने के लिए कहते।
He used to take his disciples with him. Nimai Pandit used to take his disciples with him.
और निमाय पंडित अपने शिष्यों को अपने साथ लेकर आते थे।
They also derived great pleasure in seeing their teacher, their professor, defeat everyone without fail.
और निमाय पंडित के जितने शिष्य हैं बहुत ही प्रसन्न होते थे जब देखते थे कि उनका शिक्षक है सबको ऐसे पराजित कर रहे हैं।
So here Sri Chaitanya Mahaprabhu is quoting from the Vishnu Purana.
यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु पुराण से श्लोक उदित कर रहे हैं।
Because the Puranas are untouchable. As soon as you begin quoting from the Vedic scriptures, that is taken as authority by any scholar.
जो पुराण है वह प्रमाणिक प्रमाण है।
So Mahaprabhu is pointing out that using the scripture, he's pointing out that the supreme absolute truth has features, he has qualities.
कि यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो परम सत्य हैं उनके गुण होते हैं।
The lame argument given by impersonalists, and now even in modern times that are not scholars, they still say the same thing. It's a very lame argument.
जो मायावादी हैं उनका जो प्रमुख तर्क यही होता है और आजकल के लोग भी जिन्हें कोई सिद्धांत नहीं पता परंतु फिर भी एक आम आदमी ये तर्क प्रस्तुत करता है।
They say if God is all pervading, then how can He have personality?
कि अगर भगवान सर्व जगह व्याप्त हैं, तो उनका एक शरीर कैसे हो सकता है?
Without being a scholar, it's very easy to defeat such a fool.
ऐसे तर्क को हमें पराजित करने के लिए बहुत बड़े पांडित्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मूर्खों को बहुत आसानी से हराया जा सकता है।
Do you accept that God is all pervading?
क्या आप ये विश्वास उनसे क्या ये विश्वास करते हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं?
Oh yes, yes.
वो कहेंगे हाँ हाँ हम ये विश्वास करते हैं।
Do you accept that God is all powerful?
क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जो भगवान है सर्वशक्तिमान है?
Certainly.
वो कहेंगे निश्चित रूप से।
Well, if he's all powerful, that means he can do anything, isn't it?
तो अगर वे सर्वशक्तिशाली हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं?
So very short, in a very short conversation, you've already defeated the impersonalist because what he's stuck. You already have him checkmate. What he's supposed to say, you know, he can't answer you.
तो आपने इतने छोटे से विवाद में उनको पराजित कर दिया है. वो checkmate हो गए. अब आपको क्या उत्तर देंगे?
So try to understand that Krishna consciousness is logical.
आप समझने का प्रयास कीजिए जो कृष्ण भावनामृत है ये बहुत ही लॉजिकल है।
But if the Supreme Lord is omnipotent and if he wants to have personality, why shouldn't he have personality?
अगर परम सत्य है अनंत हैं और वे अपना एक व्यक्तित्व चाहते हैं क्योंकि सर्वशक्तिशाली हैं कुछ भी कर सकते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व है क्यों नहीं हो सकता?
If he's all powerful, who has the power to forbid him to have personality?
सर्वशक्तिशाली का अर्थ है उनके पास अपने व्यक्तित्व रखने की भी शक्ति है।
Nobody has the power to forbid him to have personality.
तो किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उनके व्यक्तित्व को।
If he wants to enjoy being impersonal, he also has that feature.
अगर कोई उन्हें निर्विशेष रूप में आनंद लेना चाहता है ऐसा संबंध रखना चाहता है तो वो भगवान वो भी करते हैं।
He can enjoy being all pervading as the supreme Brahman. So he's already enjoying as Brahman. He's Purusha. He enjoys everything. He's already enjoying, but he wants something more.
परम सत्य सर्वशक्तिशाली हैं वह हर जगह व्याप्त भी हो सकते हैं और उनका व्यक्तित्व भी हो सकता है
Because he's not getting ananda or you could say rasa ananda he's not getting rasa ananda out of the enjoying the fact that purusha he's enjoying this all pervading brahman it's just a detail it's just no big deal so it's there it's his energy he enjoys all his prakriti all his energy that's okay but that doesn't mean that is his supreme enjoyment
क्योंकि परम सत्य जो है वह परम पुरुष भी हैं और परम पुरुष होने के नाते वे हर प्रकार के आनंद का भोग करते हैं तो जब वो हर जगह व्याप्त हैं इस रूप में वह ये उनकी सारी शक्तियां हैं बट इसमें आनंद नहीं है आनंद व्यक्तित्व में आता है रस में आता है संबंधों में आता है
although the brahman is all pervading still there is variety
हालांकि जो ब्रह्मांड है यह भगवान की ब्रह्म ज्योति है वह हर जगह व्याप्त है फिर भी उसमें विभिन्नताएं हैं
previously Shiva Prabhupada has called Parama Shakti Vibhada Vishwayate that the Supreme Personality of Godhead has multifarious energies variety
पिछले श्लोकों में शिला प्रभुपाद जी ने बताया था पराशर शक्ति विविधाय श्रूयते कि परम सत्य के विविध शक्तियां हैं
So it's very simple.
ये बहुत सरल है।
All powerful means that the supreme being can have no personality and he can have personality at the same time. No problem. It's not a problem. He can do both. But his supreme enjoyment is not in the impersonal feature. It is very secondary or tertiary to his enjoyment.
तो ये बहुत सरल है कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं तो उनके दोनों ही विस्तार हैं कि वे हर जगह व्याप्त भी हैं और उनका व्यक्तित्व भी है परंतु जो परम आनंद है वह हर जगह व्याप्त के जो रूप है उसमें नहीं होता वो व्यक्तित्व के रूप में होता है परम आनंद
दिस कांसेप्ट इज गिवन मोस्ट परफेक्टली इन श्री इशु उपनिषद
इस सिद्धांत की बहुत ही अच्छे से चर्चा हुई है श्री इशु उपनिषद में
हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हिच वर्स
आप में से कितने भक्त जानते हैं कौन से श्लोक में श्री इशु उपनिषद के
यस प्रभु
ओम
पूर्णमदा पूर्णमिदं यस ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णम् अदाय पूर्णं पूर्णम् उदच्छते एवरीवन शुड से लेट्स से
सभी कर रही है
पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्छते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं नास्ति
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्छते
गिव द ट्रांसलेशन प्लीज
इसका अर्थ बताइए
The Supreme Personality is complete and if some complete is taken out from it, that is also complete. Bhagwan Poorn hai aur Poorn Bhagwan mein se agar kuch nikalta hai, toh wo bhi Poorn hota hai. Aur Bhagwan ki Poornta khatam nahi hoti hai agar unmein se kuch Poorn nikalta hai.
But actually I'm looking for another verse. This is a good verse, of course. I'm looking for another verse. Yes, Prabhu.
Please remove your golden effulgence from your so that I can see your face.
Yes, that is the why Prabhupada made Ishu Upanishad available in 1969, because it just wipes out impersonalism.
So Prabhupada ne 1969 mein. 1969 में इसलिए श्री इशु उपनिषद की रचना की थी उसके तात्पर्य लिखे थे क्योंकि वह मायावाद का पूर्ण रूप से खंडन कर देता है
I should build a thunder rack on there. Okay. Okay, that works. There's another mantra which we used to sing, Harinam Sankirtan.
एक और मंत्र है जो हरिनाम संकीर्तन को इंट्रोड्यूस करता है।
The Supreme Lord walks and he does not walk, everyone.
The Supreme Lord walks and he does not walk.
The Supreme Lord walks. Let's give it some rhythm. Come on, guys. That he does not walk. The Supreme Lord walks and he does not walk. The Supreme Lord walks and he does not walk. He is far away. He is far away. But he is very near as well. But he is very near as well. The Supreme Lord walks, but he does not walk. The Supreme Lord walks, but he does not walk. He is far away. Is far away, but he's very near as well. The Supreme Lord walks, but he does not walk. The Supreme Lord walks, but he does not walk. He is far away, but he is very near as well. He is far away, but he is very near as well. Now, this is very interesting because only a Vaishnava can understand this sloka. Impersonalist or anybody else, it's completely contradictory.
बहुत ही रुचिकर है क्योंकि सिर्फ वैष्णव ही श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं. श्लोक में देखने में लगता है बहुत ही विरोधाभास है.
So it's called a riddle, you know.
तो इसको पहेली कहते हैं.
Riddle means it's a puzzle.
तो ये एक पहेली है.
It could take you years to understand that. You could ask a brand new devotee, okay, please explain this verse.
तो कई साल लग सकते हैं इसको
समझने में.
आप किसी नए व्यक्ति से पूछे कि इस श्लोक में को समझाइए. आप सब बहुत अनुभवी भक्त हैं.
So you're not brand new.
आप नए नहीं हैं.
Let's ask a yellow boy.
तो हम पीले वस्त्र वाले भक्तों से पूछते हैं.
The Supreme Lord walks, but he does not walk. What does that mean?
कि परम सत्य चलते हैं और नहीं चलते. इसका क्या अर्थ है?
That's a contradiction. It's a riddle. It's a contradiction. Why are you looking at him? Answer.
Supreme Lord has inconceivable potencies. The Supreme Lord has inconceivable potency, so he can walk and doesn't walk at the same time.
Yes. In other words, the meaning is what it says. This is Ishapanishad personified. Ishapanishad personified is the speaker of Ishapanishad.
The Ishapanishad. उनका व्यक्तित्व रूप से साक्षात ईशोपनिषद ने ही ईशोपनिषद ग्रंथ कहा है. तो इसका अर्थ वही है जो श्लोक में लिखा है. जितने भी उपनिषद हैं, उनके भी सारे व्यक्ति
हैं
और वे धार्मिक जगत में उपस्थित हैं. हर सारे उपनिषद.
सो जस्ट वन You quoted accurately the my dear Lord, please remove your dazzling effulgence so I can see your form of verse, your form of bliss.
ईशोपनिषद में जो अंत में श्लोक आता है कि मेरे प्रिय भगवान, आपके जो इतना परम ज्योति है, कृपया आप इसको अपने चेहरे के सामने से हटाएं ताकि मैं आपका जो आनंदमय शरीर है, चेहरा है, उसके दर्शन कर सकूं.
But nowhere in the Upanishad does it say who the speaker is, but someone's speaking, obviously. My dear Lord, please remove your dazzling effulgence. Dazzling means very bright light, halogen, you know.
तो ये श्लोक किन्होंने कहा है? कहीं भी उपनिषद में कोई ऐसे वक्ता नहीं आते कि इन्होंने ये श्लोक कहा है. परंतु निश्चित रूप से कोई वक्ता होंगे. तभी श्लोक में कहा गया है कि मेरे प्रिय भगवान, कृपया ये जो भ्रम ज्योति है इनको हटाएं.
But Ishvanishad never says who is talking.
ईशोपनिषद में ये नहीं बताया कि कौन बात कर रहा है.
श्रीमद् भागवत श्री सूत उवाच.
जैसे श्रीमद् भागवत में आता है श्री सूत उवाच,
श्री भगवान उवाच,
भगवान उवाच,
नारद उवाच,
उवाच,
मैत्रेय उवाच,
मैत्रेय उवाच.
Always, you know, Shukadeva Goswami Uvacha, Raja Uvacha. There's always a person that's speaking.
तो कोई ना कोई व्यक्ति हैं जब हम देखते हैं जो श्लोक का उच्चारण करते हैं श्रीमद् भागवतम में.
Just like in this verse taken from the Upanishads.
जैसे कि ये श्लोक है जो उपनिषद से लिया गया है.
Is also being spoken by someone.
ये श्लोक का भी उच्चारण किन्हीं ने किया है.
But again, actually, the exact speaker is not stated, so it's Vedas personified. If the speaker is not stated, then it's like the Vedas personified.
परंतु यहाँ पे जो किन्होंने श्लोक कहा है उनका mention नहीं किया गया है. ऐसे केस में अधिकतर जो वेद होते हैं उनका व्यक्तित्व रूप ही इन श्लोकों को कहता है.
But this is just Mahaprabhu is just quoting the verses out of context, but the previous verse is addressing a king, but the speaker is not stated.
तो चैतन्य महाप्रभु ने जो ये श्लोक उदित किया है ये श्लोक में आता है हे राजन, यानी किसी राजा को संबोधित किया जा रहा है, परंतु कौन संबोधित कर रहा है इसका हम यहाँ पे कहीं लिखा
नहीं. So the Supreme Lord walks.
परम सत्य चलते हैं.
Although it's said in the spiritual world, all walk is dance.
बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में चलना भी नृत्य के समान है.
And all talk is song.
और बात करना गीत गाने के समान है.
But for practical reasons, so Ishvanishad says that the Supreme Lord walks. What does that mean?
कि ईशोपनिषद कह रहे हैं कि परम सत्य चलते हैं. इसका क्या अर्थ है?
We don't have to twist it. It's clear. The meaning is crystal clear. The
Supreme. तामेश का कोई तरोड़ मरोड़ ना नहीं है. इसका अर्थ स्पष्ट है.
Give the purport. We say it means he has two legs. Use your brain. He has two legs.
कि जो परम सत्य हैं उनकी भी दो टांगे हैं.
So with those legs he can walk.
और उन टांगों से वे चलते हैं.
Just like an ordinary human being.
जिस प्रकार से एक मनुष्य.
And we go elsewhere in the Shastra and we see that it says that Krishna is like a dancing actor.
और जगह शास्त्र में भी हम पढ़ते हैं कि कृष्ण एक नृत्य करने वाले एक्टर के समान है.
He behaves since birth, since his appearance.
अपने प्राकट्य से ही वे इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं.
He behaves like a human being. He doesn't always behave like the Supreme. Om.
When Nar Lila mein manushya ki bhanti.
Bhagwan, Bhagwan, Om, Shanti, Shanti, Shanti. He doesn't always behave like that.
तो एक मनुष्य की भांति ही उनका व्यवहार रहता है.
He passes urine on the floor, you know.
और वह फ्लोर पे या यूरिन पास कर देते हैं.
This is why Lord Brahma was having trouble accepting that he was the Supreme Personality of Godhead.
इसलिए जो ब्रह्मा जी हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही थी कि इनको भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए.
Due to the Aishwarya concept.
क्योंकि ऐश्वर्य के सिद्धांत के अनुसार.
Formality.
ऐश्वर्य का अर्थ है बहुत ही formal.
He was unable to appreciate.
तो वह उनकी इस लीला को उनकी इतनी प्रशंसा नहीं कर पा रहे थे.
Ended up being a huge embarrassment for him. Huge embarrassment.
तो अंततः हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को क्या क्या चीजों का अनुभव करना पड़ा.
But it's interesting, it is significant that when Indra, the king of heaven, also over the Govardhan Hill incident, made a complete ass out of himself.
और बहुत ये भी रुचिकर है कि हम इंद्र देखते हैं जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन उठा लिया है तो अपने आप को बिल्कुल मूर्ख बना दिया.
Indra is a Vishayi. He's a sense enjoyer. He's a king. He's a big shot.
जो इंद्र है वे विषयी है, एक राजा है, सभी देवताओं के राजा माने जाते हैं.
He enjoys many dances, unlimited thousands, hundreds of thousands of of dancing girls, he can have sex with any one of them he wants, you know.
अरे अनंत जो वहाँ पे अप्सराएं हैं, उनका उनका भोग करते हैं.
So he's a विषयी.
तो वह विषयी है.
Although he's pious.
हालांकि वह.
He's a devotee. You can't say that Indra is not a devotee, even though from time to time he acts like a demon.
वो भक्त हैं. आप ये नहीं कह सकते कि इंद्र भक्त नहीं हैं. परंतु समय समय पर देखते हैं कि वह असुर की तरह भी कार्य करते हैं.
Kept stealing the 100th horse at Prithu Maharaj's jagna.
उन्होंने प्रितु महाराज का जो यज्ञ किया गया था तो उसमें जो सौवा घोड़ा था उसका हम बार चढ़ा रहे थे.
Indra is definitely not a pure devotee. Definitely not. He's a Sakama devotee.
जो इंद्र है वह निश्चित रूप से शुद्ध भक्त नहीं है.
You know the meaning?
वह सकाम भक्त है.
Sakama.
क्या आपको अर्थ पता है इस शब्द का? सकाम भक्त.
Yes, having many desires. Very good. Virtually unlimited, sakama, virtually unlimited material desires, including lust. That's true. Kama means many desire. Kama means lust. Many meanings. Sakama.
Sakam का अर्थ है जिसके बहुत सारे भौतिक इच्छाएं.
Of course, the structure says, akama sabakamoga moksha kama. Whether you are full of material desire,
शास्त्र हैं वे कहते हैं कि चाहे आप में बहुत इस
और akama means the opposite. Whether you are having no material desire at all,
या akam जो उसका विपरीत, आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है.
You should worship the supreme personality of Godhead.
आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए दोनों ही.
All your desires will be fulfilled. Doesn't matter.
आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे.
Material or spiritual.
भौतिक या आध्यात्मिक.
So Indra is the Sakama devotee.
जो इंद्र है वह सकाम भक्त है.
Now it's very important to analyze the difference. Both Indra made a fool out of himself. And so did Lord Brahma in the presence of the Supreme Personality of Godhead.
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस दोनों लीलाओं का विश्लेषण करें कि जो इंद्र हैं उन्होंने भी क्या गलती की, ब्रह्मा जी ने भी क्या गलती की, परंतु एक अंतर है.
Both had to do with Krishna at a very young age, 6-7 years old.
ये दोनों लीला तब हुई जब कृष्ण बिल्कुल 6 या 7 वर्ष के थे.
So after realizing his, after he realized that he was completely defeated by this little boy, Indra was extremely ashamed and regretful.
जब इंद्र को साक्षात्कार हुआ कि वह पूर्ण रूप से पराजित किया जा चुका है नन्हे बालक के द्वारा, तो उन्हें बहुत ही ग्लानी हुई.
The lake next to Govardhan, isn't it, where his elephant was crying and all that, you know?
जो गोवर्धन के समीप कुंड है, जहाँ पे ने.
He is feeling deep regret.
तो और बहुत ही उन्हें पश्चाताप हो रहा है.
He realized he committed maha apradh.
और उन्हें अंदर साक्षात्कार हुआ कि उन्होंने महा अपराध किया.
Very strange character, Indra. Very strange, Sakama devotee. It's very dangerous to be a Sakama devotee.
जो इंद्र है उनका व्यक्तित्व बहुत ही विचित्र है. सकाम भक्त है. और सकाम भक्त होना बहुत ही खतरनाक है.
A Sakama devotee may commit Vaishnav apradh.
क्योंकि सकाम भक्त वैष्णव अपराध कर सकता है.
Due to ahankar, false ego, due puffed up.
अहंकार के कारण.
Generally, a sakama devotee is going to be puffed up.
जो सकाम भक्त होगा उनमें बहुत अभिमान
होगा. Either out front, the English word is overtly. Do you know the word? Out front. Somebody obviously, oh, so and so das is really puffed up. I can't stand the guy. So everybody knows, oh, such and such devotee. He's a devotee. Well, people bad talk him, say, oh, he's really puffed, I can't stand the guy.
तो सकाम भक्त होते हैं, बहुत अहंकार होता है, अभिमान होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी कार्य करते हैं.
So people make offenses against you, you make offenses against them. This position of being puffed up, well, it's not real devotee, that's the point. The shadow, only the shadow of real devotee. Real devotee cannot make apparat, that's a fact. A real devotee cannot.
जो असली भक्त होते हैं वह अपराध नहीं करते.
So Indra makes a fool out of himself and he's crying and his elephant is crying.
जो इंद्र है तब उन्होंने गलती की और वे फिर उसके बाद बहुत पश्चाताप कर रहे थे, रो रहे थे, बार बार रो रहे थे.
Filling up a whole lake with tears.
तो उन्होंने पूरे कुंड का निर्माण कर दिया अपने आंसुओं से.
The lake is still there. It's one of the stops on the side of Govardhan, isn't it? Of the Prakal party.
तो ये कुंड अभी भी उपस्थित है.
And discusses लीला.
तो ये लीला.
So then when Lord Indra, when he realized his blunder, but the danger of being a Sakama devotee is he didn't get it straight.
The Sakam Bhakt hone ka jo khatra hai, bar bata rahe hain, he didn't get it straight.
It was after that that Krishna went up, you know, Satyabhama wanted the Parijata flower. Very contradictory, this Indra is very contradictory. Sometimes you give a gift of something very valuable for the planets. But in this case, Indra, do you know that he's a henpecked husband? Do you know that?
So, क्या आपको पता है जो इंद्र हैं, अपनी जो पत्नी हैं, उनका पूरे गुलाम हैं, henpecked husband.
Because Satyayama went on a joyride with Krishna on the back of Garuda, and they went up. They went up to the heavenly planets.
गोवर्धन लीला जो हुई थी उसमें उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, परंतु फिर हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर उनके लोक में गए.
सत्यभामा saw the Parijata flowering tree. She said, oh, I want that. I want that.
जो सत्यभामा है वह परिजात का जो वृक्ष है वो चाहती थी.
Oh, this is maybe like 75 years later.
ये लगभग 75 साल बाद गोवर्धन लीला के.
Earth time.
पृथ्वी के समय
Krishna was on the planet 125 years. This is Dwarka Leela.
और ये द्वारका लीला है.
So when Satyabhama went and said, "Oh Krishna," you know, woman's charming words, you know, smiles. "Oh Krishna, I want that flowering tree. It's very pretty. It smells really good. Can you get it for me, please?" Lots of charm, you know.
जो सत्यभामा है इस प्रकार से कृष्ण को अनुरोध कर रही थी कि मेरे को एक परिजात का वृक्ष चाहिए, क्या आप मेरे लिए ला सकते हैं?
So Krishna is sure, of course, he wants to please his wife.
और कृष्ण का निश्चित रूप से वे अपने पत्नी को प्रसन्न करना चाहते थे.
His wife pleasing business goes all the way to the Supreme Lord.
वे परम भगवान है और अपनी सारी पत्नियों को खुश करते हैं.
So he snatches the tree and he's taking off with the tree.
तो उन्होंने वह वृक्ष को उठा लिया.
Then Indra's wife says, "Indra!"
तो फिर इंद्र की पत्नी ने कहा,
"Indra, what are you? From my personal garden, this Krishna just stole Parijata tree. It's my tree. It's my flower. It's my private garden. This Krishna just stole from my garden. What is wrong with you, Indra? Wake up!"
तो उनकी पत्नी इस प्रकार से इंद्र को कह रही थी कि जो कृष्ण है उन्होंने मेरे बगीचे से मेरा जो पारिजात वृक्ष है उसको चुरा लिया है. तुम क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, जागो.
Do something.
कुछ कीजिए.
You eunuch. She accuses him of being impotent, you know.
और उनको वह एक हिजड़े के रूप में संबोधित कर रही थी.
And he goes, yes, dear, okay, okay. So he grabs his sword and then gets ready, gets on his elephant and everything.
और फिर इंद्र ने कहा, ठीक है प्रिय, और उन्होंने अपनी तलवार.
He goes to stop Krishna, but of course he cannot. Krishna has no intention of stopping.
और वह कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ गए.
Then there is a fight.
और तब युद्ध हुआ.
कृष्ण बोल.
ये कृष्ण पुस्तक में है.
The amazing thing is that once again, by the will of the Lord, all of the devas, including Lord Shiva, sided with Indra.
और इसमें सबसे रुचिकर तथ्य ये है कि सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी, उन्होंने इंद्र की तरफ, इंद्र के पक्ष में हुए.
So this is one of multiple instances in the Bhagavad Purana where Krishna defeats all of the devas. So Krishna, again and again in the pastimes of Srimad Bhagavatam alone, we find in other Puranas, Krishna and Lord Vishnu defeat the devas again and again. Therefore, this establishes his position as supreme. So he has this, while proving that he's the supreme, He has some fun, that's all.
श्रीमद् भागवतम की कई लीलाओं में से एक लीला है जब भगवान कृष्ण सभी देवताओं को पराजित करते हैं तो उनसे हमें उनकी जो परम स्थिति है वो स्थापित होती है और भगवान ऐसे युद्ध करते हैं अपने सिर्फ आनंद के लिए.
He has some fun with it. Why shouldn't he have some fun with it?
वह कुछ आनंद लूटना चाहते हैं.
So Indra's already forgotten and maybe it was 75 earth years later, you know. And already he's completely forgotten his mood of remorse, you know, in the Govardhan Lila. He's completely forgotten the lesson he learned in the Govardhan Lila. Completely forgotten.
Govardhan Lila mein jo unka bhav tha phir paschatap ka usko bhi woh bhul chuke the.
Do you know the word oblivious? Oblivious. He's oblivious to the fact that it's the same Krishna who defeated him as a child. He's completely covered over. He can't remember. He doesn't realize. Krishna is the absolute supreme Lord. He's too covered over. This ignorance is very dangerous. Very dangerous.
Yeah, ज्ञान तो बहुत ही खतरनाक है कि इंद्र भूल गया था कि ये वही परम भगवान है.
Now, what is very significant is that at least Indra showed deep humility and he surrendered and he offered many prayers after the Govardhan Lila, after he made an ass out of himself in Govardhan Lila.
The महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इंद्र है उनको पश्चाताप हुआ था और उन्होंने बहुत विनम्रता प्रकट की और उन्होंने कई प्रार्थनाएं अर्पित की.
Completely smashed by a 7-year-old boy.
कि 7 वर्ष के बालक के द्वारा उनका अहंकार पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गया.
So he had some genuine, at that time he had some genuine humility in his surrender.
तब उनके शरणागति में बहुत ही genuine विनम्रता थी.
Stood and listened very patiently to his prayers and he responded. He was animated, he responded, yes, yes, you know.
और भगवान कृष्ण ने बहुत ही धैर्य के साथ उनकी सारी प्रार्थनाएं सुनी, उनको स्वीकार किया और उन्होंने फिर उनको कुछ शब्द भी
कहे. But it's very difficult, very significant that Lord Brahma, after making an ass out of himself by failing to recognize this little boy as the Supreme Personality of Godhead.
जब ब्रह्मा जी थे, अब अंतर यह है जब ब्रह्मा जी ने भी इसी प्रकार की गलती की थी और जब उन्हें साक्षात्कार हुआ कि उन्हें गलती हुई है.
Then he also bows down, offers his dhanabad pranams. He's also crying. He's also feeling remorse about committing such an aparad.
तो वह भी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं. बहुत उन्हें पश्चाताप होता है कि उन्होंने ऐसा अपराध किया है भगवान के प्रति.
But the Krishna book describes that Krishna reacted differently with Lord Brahma. It's very important and very significant. He reacted differently with Lord Brahma than he did with Indra. Much differently.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवान कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी के साथ फिर व्यवहार किया और वे बिल्कुल अंतर था जो उन्होंने इंद्र के साथ जो व्यवहार किया था.
What is your guess? Why did he act? Why did Krishna react completely differently with Lord Brahma than he did with Indra? They both were defeated. They both made fools out of themselves. But why did Krishna react completely differently with Lord Brahma?
तुम्हारा प्रश्न पूछ रहे हैं कौन guess करेगा कि भगवान कृष्ण क्यों ऐसा उनका व्यवहार में हम बदलाव देखते हैं. इंद्र और ब्रह्मा दोनों ने ही एक गलती की थी. वह भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाए.
What is your answer? Loudly. No. He did not take them away from Krishna. That's a misunderstanding of that lila. It's impossible to take the devotees away from Krishna.
तो ये उत्तर नहीं है.
Because it's already 9 o'clock, then I have to, you know, it will take me 10 minutes to explain to you the correct understanding of the Brahma Mahotsava lila.
कि अभी 9 बज गए हैं, मेरे को कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी उसका सही.
What is your answer, Prabhu?
आपका क्या उत्तर है?
किया था तो सारे गोपियां वहां सब इकट्ठे हुए और मनसा इकट्ठे के साथ जो सारे इकट्ठे तो बहुत अच्छा लगा और ब्रह्मा ने ऐसा मिस्टेक किया तो
when Indra committed mistakes, so all the his devotees, cowherd boys and gopis, they came closer to Krishna. They were with Krishna for 7 days. But when Brahma committed the mistake, the devotees, Krishna was separated from his devotees.
He is saying he offended the devotees?
Separated the devotees.
No, he could not. Look, okay, since you don't know the purport to that pastime, then I'll have to take the time to tell you.
It's
explained by Vishnu. He offended the devotees. No, he didn't even offend the devotees. He had no effect on them.
Indra,
yeah, he offended the devotees, sure. They were frightened, of course.
Indra came along with Surbhi, with devotee of the Lord. Therefore, Krishna accepted him.
Yes.
But Brahma came alone. He did not bring some devotee.
Yes. But first of all, let me straighten out this misconception that Krishna was separated from his devotees. I got to clear up this is a major misconception.
तो पहले मैं जो ये गलत समझ है इसको ठीक करूँगा कि ब्रह्मा विमोहन लीला में कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण को अपने भक्तों से अलग कर दिया था.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the Brahma Mahotsav Leela.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur बात समझाते हैं इस लीला को.
There were three sets of cows, three sets of cowherd boys, and three sets of Krishna.
The three
not
sets
one.
Krishna ke cowherd boys jo unke gwal bal hain aur gaon ke.
Lord Brahma had no power to put Krishna's cowherd boyfriends locked in a cave for a year. He had no power to do that.
तो ब्रह्मा जी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि वह भगवान के जो अंतरंग पार्षद है ग्वाल बाल उनको वह गुफा में बंद कर दे.
So Thakur explains the cowherd boys and cows that were locked in the cave were fake. They were manufactured by illusory energy of Krishna. They were by yoga maya. They were manufactured by yoga maya. They were fake. They were not the real cows and the real cow. But there was a separation. I want to clear this misconception. There was no question of separation. That was maya. It was an illusion. Krishna was not separated from his world.
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जब ब्रह्मा जी जिन ग्वाल बालों को और गायों को लेकर गए थे और गुफा में बंद किया था तो वे असली ग्वाल बाल नहीं थे. वे प्रतिबिंब थे जो ये भौतिक शक्ति के द्वारा माया के द्वारा बनाए गए थे क्योंकि ब्रह्मा के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि भगवान को अपने भक्तों से जुदा कर दे.
So Krishna went on playing with his friends, his mother, all the matas, all the gopi mothers, and the cows had extra affection because he expanded himself and became those. This is a Krishna book.
So उसमें से जो एक सेट है कृष्ण के और ग्वाल कृष्ण अपने आप का विस्तार करते हैं विभिन्न ग्वाल बालों में तो और तभी हम देखते हैं ग्वाल बालों की जो माताएं हैं या जो गायें हैं उनका जो प्रेम है अपने ग्वाल बालों यानी जो कृष्ण विस्तार कर चुके हैं उनके प्रति बहुत ही बढ़ जाता है.
Where's the question of separation? Krishna became those. It's in Krishna book.
तो इसमें सेपरेशन का कोई मतलब ही नहीं होता.
But I complete by saying the real answer to the question that I'm driving at is that Indra is a materialistic devotee, sakama.
तो असली उत्तर ये है कि जो इंद्र है वह सकाम भक्त हैं.
It's not surprising for him to be puffed up, and it's not surprising for him to make a stupid mistake because he's सकाम
devotee. तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इंद्र से ऐसी गलती हुई क्योंकि सकाम भक्त हैं.
But Brahma is the original guru, the original acharya of the entire universe. He's a big shot, a so-called big devotee. He's a Brahman, not a Kshatriya. The Vedas came out of his mouth. Boy, he's supposed to know all these things. supposed to know the conclusion of the Shastra, and he did not know. You see, by the will of the Lord, he was covered by Yoga Maya. Although he is the biggest scholar in the creation, and all the devas go to him for advice when they need advice on anything, because he knows all the Shastras. The Vedas came out of his mouth.
परंतु जो ब्रह्मा जी हैं बहुत ही बड़े भक्त के रूप में जाने चाहते हैं सारे वेदास उन्हीं से आए हैं वही मूल स्रोत थे इस सृष्टि के पहले जो व्यक्ति हैं तो उनसे ऐसी गलती हो गई ये बहुत विचित्र बात है क्योंकि वह योग माया के द्वारा आच्छादित हो गए थे सभी देवतागण जब समस्या में होते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं समाधान ढूंढने
The difference is that Krishna interacted with Indra and, you know, accepted his apology.
कि जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने इंद्र के साथ आदान प्रदान किया उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उनका जो क्षमा याचना थी उसको स्वीकार किया
But the Krishna book explains, go back and read the story. When the Krishna book explains that when Lord Brahma also offering his Dhanava pranams, also crying, offering prayers in the same way like Indra.
परंतु कृष्ण पुस्तक हमें इसमें ये वर्णन आता है समझाते हैं कि जब ब्रह्मा जी ये प्रार्थना अर्पित कर रहे थे रो रहे थे प्रणाम कर रहे थे
It's described that Krishna stood there like a stone statue.
तो बताया गया
कि motionless. He stood there like a statue.
तो बताया कि कृष्ण बिल्कुल एक मूर्ति के समान
लॉर्ड
बिना हिले डुले वहां पे बस खड़े रहे
लॉर्ड ब्रह्मा वाज कंफ्यूज्ड बाय दिस
ब्रह्मा जो थे बहुत ही कंफ्यूज हो गए इसके द्वारा
He couldn't tell, was Krishna angry, was Krishna pleased, was Krishna indifferent? He couldn't tell because you're standing like there like a statue, you could tell him,
no
response. He keeps offering prayers again and again, hoping Krishna will give him some blessing, hoping that's all right, you made it, well, I forgive you for your mistake. No, he's just standing like a stone statue.
ब्रह्मा जी पता नहीं लगा सके कि भगवान कृष्ण अभी नाराज हैं उन्होंने क्षमा कर दिया है या प्रसन्न हैं उनका क्या उनके भाव हैं क्योंकि बिल्कुल मूर्ति के समान खड़े रहे थे और ब्रह्मा जी बार बार अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे थे परंतु कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे थे
so we should not be sakam devotee, very dangerous.
तो हमें सकाम भक्त नहीं होना चाहिए बहुत खतरनाक है
okay, we'll stop there.
तो हम यहीं पे विराम देंगे
Kantara Shiva Sri Chaitanya Charitamrita ki jai Gopremanande
Zolnes Bhakti Madhura Govind Maharaj ki jai